यूहन्ना की मार्फत इंजील बाब 19। फिर पिलातुस ने ईसा को कोड़े लगवाए। फौजियों ने कांटेदार टहनियों का एक ताज बनाकर उसके सर पर रख दिया। उन्होंने उसे अर्गवानी रंग का लिबास भी पहनाया। फिर उसके सामने आकर वो कहते, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब, और उसे थप्पड़ मारते थे। एक बार फिर पिलातुस निकल आया और यहूदियों से बात करने लगा, देखो मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ला रहा हूँ ताकि तुम जान लो कि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। फिर ईसा कांटेदार ताज और अर्गवानी रंग का लिबास पहने बाहर आया। पिलातुस ने उनसे कहा, लो ये है वो आदमी। उसे देखते ही रहनुमा इमाम और उनके मुलाजिम चीखने लगे, इसे मसलूब करें, इसे मसलूब करें। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर मसलूब करो, क्योंकि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। यहूदियों ने इसरार किया, हमारे पास शरीयत है और इस शरीयत के मुताबिक लाजिम है कि वो मारा जाए, क्योंकि इसने अपने आप को अल्लाह का फर्जंद करार दिया है। ये सुनकर पिलातुस मजीद डर गया। दोबारा महल में जाकर ईसा से पूछा, तुम कहां से आए हो? लेकिन ईसा खामोश रहा। पिलातुस ने उससे कहा, अच्छा तुम मेरे साथ बात नहीं करते, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे तुम्हें रिहा करने और मसलूब करने का अख्तियार है? ईसा ने जवाब दिया, आपको मुझ पर अख्तियार न होता अगर वो आपको ऊपर से न दिया गया होता। इसी वजह से उस शख्स से ज्यादा संगीन गुनाह हुआ है जिसने मुझे दुश्मन के हवाले कर दिया है। इसके बाद पिलातुस ने उसे आजाद करने की कोशिश की, लेकिन यहूदी चीख चीख कर कहने लगे, अगर आप इसे रिहा करें तो आप रूमी शहंशाह कैसर के दोस्त साबित नहीं होंगे। जो भी बादशाह होने का दावा करे वो शहंशाह की मुखालिफत करता है। इस तरह की बातें सुनकर पिलातुस ईसा को बाहर ले आया। फिर वो जज की कुर्सी पर बैठ गया। उस जगह का नाम पच्चीकारी था। आरामी जबान में वो गब्ता कहलाती थी। अब दोपहर के तकरीबन 12 बज गए थे। उस दिन ईद के लिए तैयारियां की जाती थी क्योंकि अगले दिन ईद का आगाज था। पिलातुस बोल उठा, लो तुम्हारा बादशाह। लेकिन वो चिल्लाते रहे, ले जाए इसे, ले जाए इसे मसलूब करें। पिलातुस ने सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब पर चढ़ाऊं? रहनुमा इमामों ने जवाब दिया, सिवाय शहंशाह के हमारा कोई बादशाह नहीं। फिर पिलातुस ने ईसा को उनके हवाले कर दिया ताकि उसे मसलूब किया जाए। चुनांचे वो ईसा को लेकर चले गए। वो अपनी सलीब उठाए शहर से निकला और उस जगह पहुंचा जिसका नाम खोपड़ी, आरामी जुबान में गुलगुता था। वहां उन्होंने उसे सलीब पर चढ़ा दिया। साथ साथ उन्होंने उसके बाईं और दाईं हाथ दो आदमियों को मसलूब किया। पिलातुस ने एक तख्ती बनवाकर उसे ईसा की सलीब पर लगवा दिया। तख्ती पर लिखा था, ईसा नासरी, यहूदियों का बादशाह। बहुत से यहूदियों ने ये पढ़ लिया क्योंकि मसलूब का मकाम शहर के करीब था, और ये जुमला अरामी, लातीनी और यूनानी जुबानों में लिखा था। ये देखकर यहूदियों के रहनुमा इमामों ने एतराज किया, यहूदियों का बादशाह न लिखें, बल्कि ये कि इस आदमी ने यहूदियों का बादशाह होने का दावा किया। पिलातुस ने जवाब दिया, जो कुछ मैंने लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को सलीब पर चढ़ाने के बाद फौजियों ने उसके कपड़े लेकर चार हिस्सों में बांट लिए, हर फौजी के लिए एक हिस्सा। लेकिन चोगा बेजोड़ था, वो ऊपर से लेकर नीचे तक बुना हुआ एक ही टुकड़े का था। इसलिए फौजियों ने कहा, आओ इसे फाड़कर तकसीम न करें बल्कि इस पर कुरा डालें। यूं कलामे मुकद्दस की ये पेशगोई पूरी हुई। उन्होंने आपस में मेरे कपड़े बांट लिए और मेरे लिबास पर कुरा डाला। फौजियों ने यही कुछ किया। कुछ खवातीन भी ईसा की सलीब के करीब खड़ी थीं। उसकी माँ, उसकी खाला, क्लोपास की बीवी मरियम और मरियम मगदलीनी। जब ईसा ने अपनी माँ को उस शागिर्द के साथ खड़े देखा जो उसे प्यारा था, तो उसने कहा, ऐ खातून, देखें आपका बेटा ये है। और उस शागिर्द से उसने कहा, देख तेरी माँ ये है। उस वक्त से उस शागिर्द ने ईसा की माँ को अपने घर रखा। इसके बाद जब ईसा ने जान लिया कि मेरा मिशन तकमील तक पहुंच चुका है, तो उसने कहा, मुझे प्यास लगी है। इससे भी कलाम मुकद्दस की एक पेशगोई पूरी हुई। करीब मय के सिरके से भरा बर्तन पड़ा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में डुबोकर उसे जूफे की शाख पर लगाया और उठाकर ईसा के मुंह तक पहुंचाया। ये सिरका पीने के बाद ईसा बोल उठा, कलाम मुकम्मल हो गया है। और सर झुकाकर उसने अपनी जान अल्लाह के सपुर्द कर दी। फसह की तैयारी का दिन था और अगले दिन ईद का आगाज और एक खास सबक था। इसलिए यहूदी नहीं चाहते थे कि मसलूब हुई लाशें अगले दिन तक सलीबों पर लटकी रहें। चुनांचे उन्होंने पिलातुस से गुजारिश की कि वो उनकी टांगें तोड़वाकर उन्हें सलीबों से उतारने दें। तब फौजियों ने आकर ईसा के साथ मसलूब किए जाने वाले आदमियों की टांगें तोड़ दी, पहले एक की फिर दूसरे की। जब वो ईसा के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो फौत हो चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगें न तोड़ी। इसके बजाय एक ने नेजे से ईसा का पहलू छेद दिया। जख्म से फौरन खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। वो जानता है कि वो हकीकत बयान कर रहा है और उसकी गवाही का मकसद ये है कि आप भी ईमान लाएं। ये यूं हुआ ताकि कलाम मुकद्दस की ये पेशगोई पूरी हो जाए, उसकी एक हड्डी भी तोड़ी नहीं जाएगी। कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है, वो उस पर नजर डालेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाद में अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने पिलातुस से ईसा की लाश उतारने की इजाजत मांगी। यूसुफ ईसा का खुफिया शागिर्द था क्योंकि वो यहूदिया से डरता था। इसकी इजाजत मिलने पर वो आया और लाश को उतार लिया। निकोदिमुस भी साथ था, वो आदमी जो गुजरे दिनों में रात के वक्त ईसा से मिलने आया था। निकोदिमुस अपने साथ मुर और ऊद की तकरीबन 34 किलोग्राम खुशबू लेकर आया था। यहूदी जनाजे की रसूमात के मुताबिक उन्होंने लाश पर खुशबू लगाकर उसे पट्टियों से लपेट दिया। सलीबों के करीब एक बाग था और बाग में एक नई कब्र थी जो अब तक इस्तेमाल नहीं की गई थी। उसके करीब होने के सबब से उन्होंने ईसा को उसमें रख दिया, क्योंकि फसह की तैयारी का दिन था और अगले दिन ईद का आगाज था।